Obviously, I have no qualification to speak in front of this great Vaishnavas, but we were not sure finally who is coming. We thought it's only me and some of us around, and with their sincerity, all these senior devotees have graced this occasion, so it's our wonderful time that we are going to have them. And I'm just going to share maybe for 15 minutes why we should do DT worship. What is the difference between a DT and a statue or an idol? Okay? Because when we do DT worship, DT is different than a statue, right? What is the difference and why we should do that? Because somebody tells us, this is nice, so we do it. But tomorrow somebody will come and ask, why are you doing that? We should have a proper understanding why we are doing. Otherwise we will do, but we will lose the faith that we are doing it right. So that is what I am going to share in the next 15-20 minutes. And after that, Shubham Vilas Prabhu is going to share Prabhupada's pastime and his instruction about Gaurnithai worship, and Radha Gopinath Prabhu is going to share one pastime. Correct?
Gaurnithai.
Gaurnithai.
Very good.
Hindi mein class bolna hai? Sab chalega yahan pe to sab Hindi mein hai. Sirf Ruhas Bajanga Prabhu. I was just going to say ki Ruhas Bajanga Prabhu need not listen to what I'm going to speak. He knows everything. तो हिंदी में बोलना है, ठीक है, परंतु मेरा हिंदी बहुत शुद्ध नहीं है, मेरा बीच में इंग्लिश भी आने वाला है, क्योंकि पहले से मैंने सोच के नहीं रखा था, नहीं तो सोचा होता तो थोड़ा और हिंदी में प्रैक्टिस करती थी, अभ्यास करती थी. जय राधा माधवा कुंज बिहारी.
Thank you.
ಪ್ರಪ್ರಥಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ದಿನಸಾರಿಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತು ಹಮಾರೆ ಜೊ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇ ಉಸ್ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಉಪನಿಷದ್ ದಿಯೆ ಗಯೆ ಹೇ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಸೆ ಸಬ್ಸೆ ಮಹತ್ವ ಕಾ ಉಪನಿಷದ್ ಸಬ್ಕೋ ಇಸ್ಕೋ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಸಬ್ ಉಪನಿಷದೋ ಕಾ ಸಾರ್ ಜಿಸ್ಮೇ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹೇ ಗೀತ ಉಪನಿಷದ್. ವೇದಾಂತ ಕಾ ಸಾರ್ ಹೇ ಭಾಗವತಂ ಔರ್ ಇತ್ನೆ ಉಪನಿಷದ್ ಕೇ ಲಿಯೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಗೀತೋ ಉಪನಿಷದ್ ವೋ ಏಕ್ ಸಬ್ಸೆ ವೋ 108 ಉಪನಿಷದ್ ಕಾ ನಹೀ ಹೇ ಪರಂತು ಉಸ್ಕಾ ಸಾರ್ ಹೇ ವೋ ಗೀತಾ ಜೀ ಮೇ ಹೇ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಮೇ ಹೇ. ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಹಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರಾ ಜ್ಞಾನ ದಿಯಾ ಹೇ. ಕಿಸ್ನೆ ಕಿತ್ನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಮೇ? 18. ತೋ ಉಸ್ಮೇ ಸೆಂಟರ್ ಕೇ ಜೊ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇ ವೋ ಸಬ್ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಮಹತ್ವ ಕೇ ಹೇ. ಉಸ್ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಸೆಂಟರ್ ಕಾ ಹೇ 9ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಔರ್ 9ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಜೊ ಸಾರ್ ಹೇ ವೋ ಉಸ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಾ ಮೇ ಹೇ 9.34. ವೋ ಏಕ್ ಹೀ ಶ್ಲೋಕಾ ಹೇ ಸಾರಿ ಅಚ್ಛಾ ಸಾರಿ 9.36. ಬಹುತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಇತ್ನಾ ತೋ ವೋ ಏಕ್ ಹೀ 700 ಶ್ಲೋಕಾ ಮೇ ಏಕ್ ಶ್ಲೋಕಾ ಹೇ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಕಿಯಾ ಹೇ. ಭಗವಾನ್ ನೇ 700 ಶ್ಲೋಕಾ ಬತಾಯೆ ಉಸ್ಮೇ ಸೆ ಐಸಾ ತೋ ನಹೀ ಥಾ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೋ 699 ಆತೆ ಥೆ ಔರ್ 9ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ನಹೀ ಆತಾ ಥಾ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಉನ್ಹೋನೆ ರಿಪೀಟ್ ಕರ್ ಲಿಯಾ. ಐಸಾ ನಹೀ ಹೇ, ಏಕ್ ಹೀ ಶ್ಲೋಕಾ ಭಗವಾನ್ ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಕಿಯಾ. ಕ್ಯೋ? ಕ್ಯೋಂಕಿ ವೋ ಮಹತ್ವ ಹೇ, ವೋ ಹಮೇ ಬತಾನಾ ಚಾಹತೆ ಕಿ ಇಸ್ ಪೆ ಧ್ಯಾನ್ ದೋ. ಔರ್ ವಹೀ ಶ್ಲೋಕಾ ಹೇ ಜೋ 9.34 ಹೇ ಔರ್ ಬಾದ್ ಮೇ 18ವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ 65ವಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ವೋ. ಔರ್ ವೋ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಮನ್ ಮನಾ ಭವ ಮದ್ ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾ ಜೀವಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯತಿ ಸತ್ಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಜಾನೆ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 18.65. ಬಟ್ ಇಸ್ಮೇ ಫಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಭಗವಾನ್ ಬನಾ ಬತಾದೇ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೇ ಏಕ್ ಭಕ್ತ ಕೋ. ಮನ್ ಮನಾ ಆಪ್ಕಾ ಮನ್ ಮುಜೆ ದೀಜಿಯೇ, ಭವ ಮದ್ ಭಕ್ತೋ ಮೇರಾ ಭಕ್ತ ಬನಿಯೇ, ಮದ್ ಯಾಜಿ ಮದ್ ಯಾಜಿ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಭಾಜಿ ಸುನಾ ಹೇ, ಯಾಜಿ ಸುನಾ ಹೇ? ಮದ್ ಯಾಜಿ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಮೇರಿ ಪೂಜಾ ಕರೋ. ತು ಜಬ್ ಭಗವಾನ್ ದೋ ಬಾರ್ ಬತಾದೇ ಹೇ ಕಿ ಮೇರಿ ಪೂಜಾ ಕರೋ, ತೋ ಹಮ್ ಕೈಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕರೇ? ಹಮ್ ಯಹ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಮೇ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಲೇಕರ್ ಆಯೇ ಹೇ, ಪರಂತು ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಕೈಸಾ ಹೇ? ಸಚ್ಚಿದ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ, ವೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಕೋ ಹಮ್ ಹಮಾರೆ ಭೌತಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಸೇ ಕೈಸೆ ಪೂಜಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ತೋ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಬತಾಯಾ ಹೇ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ನಿ ಹೇ ತೋ ಭಗವಾನ್ 5 ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ರೂಪ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೇ. ಪಹಲಾ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಪರಾ. ಪರಾ ಮತ್ಲಬ್ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ. ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಕಹಾ ರಹತೆ ಹೇ? ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ್ ಮೇ. ಹಮ್ ತೋ ತಭಿ ತೋ ಜಾನ್ ಜಭಿ ಜಾಯೆಂಗೆ ತಭಿ ಪೂಜಾ ಕರೆಂಗೆ, ಅಭಿ ಕೈಸೆ ಪೂಜಾ ಕರೆಂಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಮೇ ರಹಕೆ. ದೂಸರಾ ಉನ್ಕಾ ರೂಪ ಹೇ ವೋ ಹೇ ವ್ಯೂಹ. ವ್ಯೂಹ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಜೋ 4 ಪಹಲೆ ವಿಸ್ತಾರಿತ ಹೋತೆ ಹೇ. ಕೌನ್ಸೇ 4 ಕ್ವಾಡ್ರುಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆತೆ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಸೇ? ಸಂಕರ್ಷಣ್, ವಾಸುದೇವ್, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಔರ್ ಅನಿರುದ್ಧ. ಉನ್ಕೋ ಕಹತೆ ಹೇ ವ್ಯೂಹ ಸ್ವರೂಪ. ಪರಂತು ವೋ ಭಿ ಕಹಾ ಹೇ? ವೈಕುಂಠ ಮೇ ಹೇ. ಉಸ್ಸೆ ಭಿ ಜಬ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ತಭಿ ಪೂಜಾ ಕರೆಂಗೆ, ಅಭಿ ಕ್ಯಾ. ತೀಸರಾ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ, ಭಗವಾನ್ ಕಾ ತೀಸರಾ ಹೇ ಉಸ್ಸೆ ಕಹತೆ ಹೇ ವಿಭವ ಸ್ವರೂಪ. ವಿಭವ ಹೇ ವೋ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಜಬಿ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ, ವೋ ಸಬ್ ರೂಪ ಮೇ ಆತೆ ಹೇ ತೋ ಉಸ್ಸೆ ಕಹತೆ ಹೇ ವಿಭವ ಸ್ವರೂಪ. ಚೌಥಾ ಹೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಕಹಾ ಹೇ? ಹಮಾರೆ ಅಂದರ್. ಪರಂತು ಉಸೆ ಅಗರ್ ಹಮೇ ಪೂಜಾ ಕರ್ನಿ ಹೇ ತೋ ಜರಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹೇ, ಹೇ ನಾ? ಹಮ್ ದೇಖ್ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ ಹಮಾರೆ ಅಂದರ್ ಕೆ ಅಂತರಾತ್ಮಾ ಕೋ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಭಗವಾನ್ ಅಪ್ನಿ ಕೃಪಾ ಸೇ 5ವೇ ಸ್ವರೂಪ ಮೇ ಆತೆ ಹೇ ಔರ್ ಉಸೆ ಕಹತೆ ಹೇ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ. ಭಗವಾನ್ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಅರ್ಚ ಮೇ ಕೋಹಿ ಫರಕ್ ನಹೀ ಹೇ. ಔರ್ ಇಸಿಲಿಯೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೇ, ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಹಿ ತುಮಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ನಂದನ್. ಕಿ ಆಪ್ ಪ್ರತಿಮಾ ನಹೀ ಹೋ, ಆಪ್ ಸಿರ್ಫ್ ಮೂರ್ತಿ ನಹೀ ಹೋ, ಕಿ ಆಪ್ ಸಿರ್ಫ್ ಪತ್ಥರ್ ನಹೀ ಹೋ, ಆಪ್ ಸಿರ್ಫ್ ಮೆಟಲ್ ನಹೀ ಹೋ, ಧಾತು ನಹೀ ಹೋ, ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಹೋ. ತೋ ಭಗವಾನ್ ಖುದ್ ಬತಾತೆ ಹೇ ಕಿ ಹಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ನಿ ಹೇ ಔರ್ ಫಿರ್ ಹಮಾರೆ ಉಪರ್ ಕೃಪಾ ಕರ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಅರ್ಶ ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಮೇ ಹಮ್ भौतिक जगत में है तभी तक आध्यात्मिक भगवान को किस तरह से पाए, तो हम बड़े नहीं हो सकते हैं, भगवान छोटे हो जाते हैं। एक बेटा है छोटा सा, उसको पापा के कंधे पे चढ़ना है तो पापा क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, क्योंकि पापा है जो बच्चे को प्यार करते हैं। तो भगवान भी हमें प्रेम करते हैं, इसलिए भौतिक स्वरूप लेते हैं, परंतु वो भौतिक नहीं है। तो भगवान अपने ऊपर कृपा करके ये भौतिक स्वरूप लेते हैं अर्च विग्रह में। अभी भगवान की जो अर्च विग्रह है उससे हम, जैसे आज इन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया, हम कहते हैं कि अर्चा पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो भैया, क्यों? क्योंकि अर्चा और भगवान में फर्क नहीं है। इसे हम कैसे समझे, पहली बात है लॉजिक से समझ सकते हैं। मेरे पास में ये कागज है, मैंने इसको लिया, इसको बहुत सारा मरोड़ा, नहीं तो मैंने इसको 1000 टुकड़े करूंगी, कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अभी हमारे जेब में किसी के पास में $50, किसी के पास में है, निकालो जरा लाओ, अभी वो भी एक कागज है, वो कागज का मैं 1000 टुकड़ा करती हूँ तो हमारे हृदय के भी 1000 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। अरे भैया कागज है, ये भी कागज है, जब ये कागज के मैं टुकड़े करती हूँ तो किसी को कोई दुख नहीं होता, परंतु वो डॉलर है, डॉलर फिर टुकड़े करो तो बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो ही जो कागज है उसको गवर्नमेंट ने स्टैम्प किया है, जिसकी वजह से वो जो सादा कागज था वो अभी डॉलर बन गया है, और अभी उस पेपर में, सादे पेपर में वो ताकत है कि वो उतनी वस्तु खरीद सकता है। उसी तरह से भगवान जो 8 अलग अलग रूप से भौतिक जगत में मूर्ति के स्वरूप में आ सकते हैं, कौन से 8 स्वरूप है, भगवान के 8 स्वरूप मतलब अलग अलग रूप में जो आते हैं उसे कहते हैं शैली दारुमयी लोही लेपिया लेख्या शैकटी मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्ट विधा। शास्त्र में बताया गया कि जो 8 जात के चीज है, सबसे पहला है शैली, शैली का मतलब है स्टोन, भगवान पत्थर के स्वरूप में भी अर्च बन सकते हैं। दूसरा है दारुमयी, दारू का मतलब है दारू नहीं, भगवान दारू नहीं, दारू ब्रह्म किसे कहते हैं, जगन्नाथ को, क्योंकि वो वुड है, तो भगवान वुड क्या बोलते हैं उसे, लकड़ी, लकड़ी के स्वरूप में आ सकते हैं। तीसरा है लोही, लोही मतलब मेटल। चौथा है लेपिया, लेपिया का मतलब है अर्थ, मट्टी। अगर हम वृंदावन में जाते हैं गोवर्धन के समय पे तो सब मट्टी से गोवर्धन बनाते हैं और उसे भगवान की मूर्ति के जैसे सजाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। फिर है लेख्या, लेख्या का मतलब है पेंटिंग। अगर हम बरसाना में मोर कुटीर में जाएंगे तो भगवान की जो मेन जो अर्च है वो है मान बिहारी जी, जहाँ पे मोर बन के भगवान नाते थे वहां पे वो पेंटिंग के स्वरूप में भगवान की अर्चना की जाती है। उसके आगे है शैकटी, शैकटी का मतलब है सैंड, और मनोमयी और मणिमयी, मनोमयी मतलब मन से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं मूर्ति के रूप में, और मणि मतलब स्टोन, मतलब जैसे प्रेशर स्टोन है। तो भगवान ये सब में किस तरह से आते हैं, जब एक शुद्ध भक्त अपने प्यार से, अपनी प्योर कॉन्शियसनेस से भगवान को पुकारते हैं कि आप इसमें आके रहिए, आप इसमें वास करिए, तो भगवान एक शुद्ध भक्त के प्रेम से अधीन हो जाते हैं और फिर वो मूर्ति में वो मूर्तिमान हो जाते हैं। तो फिर जैसे एक डॉलर, एक कागज को जब स्टैम्प कर दिया जाता है डॉलर बनाने के लिए, उसी तरह से जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की जो मूर्ति है उसे अपने प्रेम से स्टैम्प करते हैं, जिससे कि फिर भगवान उसमें आके रहते हैं। दोनों में डिफरेंस हो जाता है, वो हम सब अपने आप से, हम अपने एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। हम सब ने देखा है, मैंने बचपन में बस जब भी छोटी थी ऐसे ही, तो हमारे इंडिया में सब सत्यनारायण की पूजा करते हैं, तो मुझे घर में जब भी मम्मी हलवा बनाती थी तो अच्छा नहीं लगता था, परंतु सत्यनारायण की पूजा का हलवा बहुत अच्छा लगता था। घर पे आके मम्मी को बोलती थी आप सत्यनारायण की पूजा वाला हलवा बनाओ, वही हलवा है, परंतु जब भगवान को भोग चढ़ जाता है, जब वो प्रसाद बन जाता है तो कुछ अलग ही लगता है। खिचड़ी कहो कभी किसी को खाने के लिए तो बोलेंगे कि हम बीमार है क्या, परंतु इस्कॉन में आओ तो खिचड़ी भी बहुत चाट चाट के खाते हैं। इस्कॉन की खिचड़ी बड़ी फेमस है। क्यों? वृंदावन में जाओ, राधारास बिहारी में जाओ, सब जगह पे जाओ, खिचड़ी बोले तो खिचड़ी भी लोग बहुत प्रेम से खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सादी खिचड़ी नहीं है, वो सिर्फ एक फूड प्रिपरेशन नहीं है, पर जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसमें अपनी कृपा रखते हैं। तो ये हमारे सामने प्रमाण है कि जब हम भगवान के अर्चक की पूजा अर्चना मन से करते हैं तो वो एक भौतिक वस्तु नहीं रह जाती है, परंतु भगवान स्वयं उससे हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान अपने इतने बड़े जो आध्यात्मिक स्वरूप है वहां से छोटे बन जाते हैं भौतिक रूप में। क्यों? हमारे लिए, जिससे कि हम हमारे जो सेंसेस है, हमारे जो इंद्रिया है, उसे भगवान की सेवा में लगाए। नहीं तो हमारी आंख हमेशा देखते हैं इधर उधर, भागे कुछ अच्छा देखे, कुछ अच्छा देखे, परंतु जब हम भगवान के अर्थ विग्रह को देखते हैं, देखिए यहाँ पे राधा माधव जी की इतनी सुंदर तस्वीर है, तो ऐसे लगता है जैसे देखते ही रहे। हाँ, जब हमारे सामने एक नव वधु और उनके हस्बैंड वाइफ को जो बोलते हैं हिंदी में वर वधु, राइट, हाँ वर वधु, जब बहुत ही सुंदर तैयार होकर आते हैं तो हम 5 मिनट देख पाएंगे, फिर ठीक है, फिर हम आजू बाजू बाकी सबको देखने लगते हैं, कितना उनको देख सकते हैं। परंतु जब भगवान के सुबह दर्शन खुलते हैं तो लगता है कि जैसे बस हम दर्शन करते ही जाए, लगता है कि नहीं लगता है कि हमारे खुद का, हमारे स्वयं का एक्सपीरियंस है, राइट, कि भगवान जब भी अर्चन में हमें सेवा देते हैं तो उससे जब हम हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। हमें कहा है कि भगवान की स्तुति, भगवान की जो विधि करनी है, पूजा करनी है, उसके लिए भागवत विधि है और पंचरात्रि का विधि है। प्रभुपाद ने हमें ये दो विधि दी है। भागवत विधि का मतलब है श्रवणम और कीर्तनम, चैंटिंग और सुनना, पढ़ना शास्त्रों को। परंतु चैंटिंग करते करते बहुत ही जल्दी हमें नींद आने लगती है। हम सोचते हैं कि 16 माला कभी खत्म हो जाए, फिर कल तक उसका मुंह नहीं देखे। लेक्चर बोलते हैं तो लगता है कि कभी फिनिश करेंगे, वहां बस हो गया, अभी प्रसादम का टाइम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। परंतु जब भगवान के सामने हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें कुछ याद नहीं आता है। तो ये जो विधि है, भागवत विधि और पंचरात्रि का विधि, पंचरात्रि का विधि नारद जी ने दी हुई है, नारद जी ने लिखी थी नारद पंचरात्रि में। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने भृगु मुनि को, भृगु मुनि ने दिया नारद जी को, और जब नारद जी नारदिया गोपी बन के आते हैं तो उन्होंने नारद पंचरात्रि का विधि लिखी। तो ये जो दो विधि है, भागवत विधि जिससे हम भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करें, और भगवान के अर्च विग्रह की पंचरात्रि का विधि से जब सेवा करते हैं, तो ये दोनों एक ट्रैक के जैसे है जिसपे हमारी पटरी थी, वो दोनों पटरी पे हमारी गाड़ी ठीक से चलेगी और हमें फाइनली बैक टू गॉडहेड ले जा सकती है। तो लास्ट में एक कथा बताती हूँ कि किस तरह से भगवान, अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। न्यू वृंदावन की बात है less than 20 years पहले की, तो ऐसे में कोई पुरानों से कथा नहीं बता रही हूँ, बहुत ही थोड़े सालों पहले में न्यू वृंदावन में हम जो ने भी देखा है, राधा वृंदावन चंद्र बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, तो उनके वस्त्र धोने के लिए लॉन्ड्री में दिए जाते हैं। तो एक बार जब लॉन्ड्री से कपड़े वापस आए तो देखा पुजारी ने कि राधा रानी का जो ऊपर का कपड़ा है, ब्लाउज है, वो एक्सचेंज हो गया था एक छोटी बच्ची के फ्रॉक के साथ में। तो उन्होंने लॉन्ड्री में फोन करे तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे से मिस्टेक हो गई है, तो जिनके पास गया रहेगा वो जब वापस बताएंगे तो हम आपको बताएंगे। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में, अराउंड 10 महीने के बाद में लॉन्ड्री से फोन आया कि आपका जो पहले कपड़ा हमारे से एक्सचेंज हो गया था वो अभी एक लेडी वापस लेकर आई है, परंतु वो आपको स्वयं वो कपड़ा देना चाहती है। तो वो भक्त उनको जाके मिले, उन्होंने कहा कि मैं खुद आके देखना चाहती हूँ कि ये किसका कपड़ा है। तो लेडी को कहा कि ठीक है, आप कल सुबह 7 बजे को यहाँ पर न्यू वृंदावन मंदिर में आ जाना। वो लेकर गए और जब दूसरे दिन सुबह 7 बजे वो लेडी अपने दूसरे फैमिली मेंबर के साथ में आई तो उन्होंने दर्शन खोले की कहा कि देखो इनका कपड़ा है। तो जैसे ही उसने श्री राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन किए वो फूट फूट कर रोने लगी। ये लेडी अमेरिकन, मतलब लोकल थी, हरे कृष्णा से कुछ लेना देना नहीं था उसका, कोई डिवोटी नहीं थी, परंतु जैसे ही भगवान के दर्शन करे वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे पता था ये कुछ तो डिवाइन है, मुझे पता था ये कुछ तो डिवाइन है। डिवाइन को हिंदी में क्या बोलते थे? दिव्य है। तो सर डिवोटी ने पूछा कि क्या हुआ क्या, तो बोले कि जब पिछले साल मैंने मेरी बेटी का कपड़ा जब एक्सचेंज होकर आ गया, जब हमने घर पे जाके हमें पता चला, तो मेरी बेटी को, 5 साल की मेरी बेटी थी, उसे ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था और वो लास्ट स्टेज पे थी और रोज बहुत ही पेन से रोती थी। डॉक्टरों ने कहा था हमारे पास में उसके लिए कोई इलाज नहीं है, अभी वो 1-2 महीने में अपना देह त्याग कर देगी। परंतु जो दिन हम ये कपड़ा घर पे लेकर गए, हमने खोला और उसमें से उसकी फ्रॉक की जगह पे ये जो कपड़ा निकला, उसने उसे पकड़ लिया और उसे अपने छाती से लगा लिया और फिर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। परंतु वो दिन से वो सोने उठने खाने के समय पे उसे हमेशा अपने पास लगा के रखती थी, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और वो दिन से उसने रोना और उससे जो दुख दर्द होता था वो उससे जैसे बंद हो गया। हमें समझ में आया कि कुछ तो बहुत अच्छा है इसमें, परंतु हमें पता नहीं था कि ये क्या है। डॉक्टर ने कहा था 2 महीनों 1-2 महीने की समय है, तो हमें लगा कि ये हो जाने दो, उसके बाद में ही हम कपड़ा वापस लेंगे। 10 महीने तक वो बच्ची रही और उसने एवरी सिंगल डे वो कपड़ा अपनी छाती से लगा के रखा और आखिर में बहुत ही शांति से वो यह दुनिया से गई। और जब उसकी प्रोसीजर जब खत्म हो गई तो फिर उन्होंने फोन किया, परंतु तभी तक उन्हें बहुत विश्वास आ गया था कि ये जो कपड़ा है वो बहुत ही मूल्यवान है, कुछ तो दिव्य है, इसलिए वो स्वयं देखना चाहते थे। ना तो वो भक्त थे, ना तो उन्हें कुछ पहले से विश्वास था, परंतु जो शुद्ध बालक का मन है वो उसे पहचान गया कि ये राधा रानी की कृपा है, उनके पास आई है। तो इस तरह से भगवान अपने अर्च विग्रह से हमें हमेशा ही बहुत सेवा करने का मौका देते हैं, और जब हम वो करते हैं तो हमारे खुद के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल रिक्वेस्ट शुभ विलास प्रभु।